सिडनी में लोगों को नए साल की शाम भारी हथियारों से लैस पुलिस की मौजूदगी के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने बोंडाई में हुए आतंकी हमले के बाद सख्त सुरक्षा इंतजामों के संकेत दिए हैं। ये अपील उस एंटी सेमिटिक हमले के 2 हफ्ते बाद आई है जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। प्रीमियर क्रिस मिंस ने लोगों से कहा है कि वो स्थानीय कारोबारों का समर्थन करते रहें और नए साल का जश्न तय कार्यक्रम के अनुसार मनाएं। बोंडाई में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई सुरक्षा जरूरी है, लेकिन डर को रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्रिसमस ने आगे कहा कि आतंकवाद का मकसद सामान्य जीवन को बाधित करना होता है और लोगों से अपील की कि वो बाहर निकलें और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएं। बोंडाई बीच हमले के पीड़ितों के परिवार प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय रॉयल कमीशन स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई जनता को सच जानने का हक है। एक ओपन लेटर में 17 यहूदी परिवारों ने एंथनी अल्बनीजी से तुरंत जांच शुरू करने को कहा है ताकि एंटीसेमिटिज्म में वृद्धि की वजहों और हमले से पहले कानूनों के पालन, सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और नीतियों में हुई विफलताओं की जांच की जा सके। 14 दिसंबर को हनुक्का के जश्न के दौरान 2 IS ग्रुप से प्रेरित शूटरों ने कथित तौर पर फायरिंग कर 15 लोगों की जान ले ली। पीड़ित परिवारों का कहना है कि चेतावनी संकेतों की अनदेखी की गई और वो ये जानना चाहते हैं कि चरमपंथी नफरत कैसे बढ़ने दी गई और ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा के लिए किन बदलावों की जरूरत है। क्वींसलैंड पुलिस ने ई बाइक और ई स्कूटर हादसों में वृद्धि के बाद सुरक्षा चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी क्रिसमस एनफोर्समेंट अभियान के बाद दी गई है। पुलिस के अनुसार 50 दिन चलने वाले ऑपरेशन श्योरिटी के दौरान 2000 से अधिक जुर्माने लगाए गए और लगभग 100 अवैध ई बाइक्स जब्त की गईं। अधिकारियों ने इस अभियान को सफल बताया है, लेकिन चेतावनी दी है कि जैसे जैसे लोग अपने क्रिसमस गिफ्ट के रूप में मिली ई बाइक्स का इस्तेमाल करेंगे, निगरानी और सख्त बढ़ा दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस साल क्वींसलैंड में ई बाइक से जुड़े हादसों में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। क्वींसलैंड सरकार का कहना है कि वो ई बाइक्स पर होने वाली पार्लियामेंट्री इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतजार करेगी जो मार्च में आने वाली है और उसके नतीजों के आधार पर ही कोई बदलाव करेगी। कुछ माता पिता इसे बहुत धीमी प्रक्रिया मान रहे हैं। किसी गड़बड़ी को उजागर करने के इच्छुक ऑस्ट्रेलियाई लोगों को एक जटिल कानूनी स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन 2025 में आए एक नए निर्णय ने विसिल ब्लोअर सुरक्षा से जुड़े प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है। इस फैसले के अनुसार विसिल ब्लोअर्स लीगल डिस्कवरी के दौरान प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल सार्वजनिक हित में उजागर करने के लिए कर सकते हैं। लीगल डिस्कवरी वो प्रक्रिया है जिसमें मुकदमे के लिए पक्ष गोपनीय दस्तावेज एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ऐसी जानकारी उजागर करने पर विसिल ब्लोइंग कानून के तहत सुरक्षा मिलती है। ये व्यक्तियों को डिफेमेशन के मामलों, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स के उल्लंघन, प्रतिशोध या कानूनी कार्रवाई से बचाता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फ्लोरिडा की यात्रा पर हैं, जहां वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। ये बातचीत सीज़फ़ायर के दूसरे चरण पर केंद्रित होगी। पहला चरण, जो 10 अक्टूबर से लागू हुआ था, गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाने के लिए था। उम्मीद जताई जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से लेबनन में ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह समूह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने तेल अवीव छोड़ने से पहले कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। और अब खबर भारत से। अरावली को लेकर विवाद और तेज होता दिख रहा है। इसी मुद्दे पर जयपुर में कांग्रेस ने सेव अरावली सेव लाइफ अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक निकाले गए मार्च में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि अरावली की नई परिभाषा के जरिए पर्यावरणीय सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर करने से माइनिंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है, जिससे क्षेत्र को गंभीर नुकसान होगा। दरअसल ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के उस फैसले के बाद शुरू हुआ जिसमें अरावली की नई परिभाषा अपनाई गई। इस फैसले के तहत अब केवल वही पहाड़ी इलाके अरावली माने जाएंगे जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हैं। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, TV चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।